समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्म दिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एज ऑलवेज वी हैव फॉर ऑल ऑफ यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अवर डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All this over the next 30 minutes.
Ram Ram Jaya Raja Ram, Ram Ram Jaya Sita Ram, Ram Ram Jaya Raja Ram, Ram Ram Jaya Sita Ram.
The team of Parikrama extends our greetings to all the on the auspicious occasion of Ram Navami to all tuned in. May Lord Ram bless you with strength to walk the path of Dharma and the courage to do what's right. Now we begin with the news headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में ऐतिहासिक नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया।
Prime Minister says India is proud to support Sri Lanka's development journey and its visit will add momentum to bilateral ties.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर जाएंगी।
राम नवमी इज बीइंग सेलिब्रेटेड विद रिलीजियस फर्वर एंड एंथुसियाज्म इन द कंट्री।
अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों और सरकारी नौकरियों में कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया।
एंड इन आईपीएल T20 क्रिकेट सनराइजर्स हैदराबाद टू फेस गुजरात टाइटन्स इन हैदराबाद दिस इवनिंग। And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we will talk about the International Day of Sport for Development and Peace. It is not my country's duty to push me ahead. It is my duty to push my country ahead, Major Dhyan Chand said. Today we honour how sports promote health, teamwork and unity.
हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाने वाला विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खेलों की शक्ति के माध्यम से समाज में समानता, भाईचारा और शांति लाने का संदेश देता है। इस साल की जो थीम है अनीता, वो है कि खेल के मैदान को समान बनाना और सबको साथ लेकर चलना। और ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। ये दिन भारत समेत दुनिया भर में खेलों के सामाजिक महत्व को समझने और अपनाने का अवसर है।
जी बिल्कुल, द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस IDSDP इज एनुअली सेलिब्रेटेड Today, that is the 6th of April, to recognize the power of sport in fostering positive change, bridging barriers and transcending boundaries.
और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के छोटे देश अभिजात वर्ग के खेलों में अधिक निवेश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में सफलता से राष्ट्र की सॉफ्ट पावर हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। और अनीता, जो कहते नहीं कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, अगर हमें जो है शासन करना है तो एक सॉफ्ट पावर बहुत अच्छा जरिया बन सकता है हमारी सभ्यता संस्कृतियों को दूसरे देशों तक पहुंचाने का, क्योंकि अगर और कंट्रीज के लोग हमारे देश में जब भी कोई खेल खेलने आते हैं, कुछ भी स्पोर्ट्स में आते हैं, तो कहीं कहीं वो हमारी सभ्यता और संस्कृति से भी रूबरू होते हैं और जानने का मौका मिलता है।
इट्स एन एक्सचेंज ऑफ गुडविल आल्सो। एंड आकर्षिता, डिक्लेयर्ड बाय द UN जनरल असेंबली इन 2013, दिस डे कमेमोरेट्स द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एंड एम्फसाइज द वाइटल रोल स्पोर्ट प्लेज इन बिल्डिंग अ बेटर, मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड।
किसी भी महत्वाकांक्षी देश में खेलों को महज पाठ्येतर गतिविधि से ऊपर उठकर हमारी शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग मनाना चाहिए। और अनीता, जैसे हम बात करते हैं हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम एक्सेल करना चाहते हैं, वैसे स्पोर्ट्स भी हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को हमें नहीं लगता कि हमें एज ए सिलेबस देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लाने के लिए बच्चों में, कहीं ना कहीं आजकल हम देखते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो वो उतना बाहर खेलते नहीं है, तो लीडरशिप जो क्वालिटी है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाती। तो खेल को अगर हम देखें तो सिलेबस से अलग हटकर अगर हम इसको सेलिब्रेट करना चाहें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जो बहुत ही बेहतर है।
इट विल बी अ ग्रेट आइडिया। एंड इफ यू हैव हर्ड इंटरव्यूज ऑफ आवर हार्ड वर्किंग स्पोर्ट्स चैंपियंस, दे ऑल एम्फसाइज हाउ स्पोर्ट्स टीच इनवैल्यूएबल लेसंस ऑफ रेजिलियंस, लाइक यू सेड, ऑफ टीम वर्क एंड हैंडलिंग प्रेशर, व्हिच आर क्रिटिकल फॉर पर्सनल एंड नेशनल ग्रोथ।
संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी ताकि लोग ये समझ सके कि खेलों के जरिए समाज में बदलाव लाया जा सकता है। ये दिन 1896 में आयोजित पहले ओलंपिक्स खेलों की याद में मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को हुई थी।
एंड सिंस इट्स फर्स्ट सेलिब्रेशन द डे हैज बिकम एन एनुअल अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट पीस थ्रू स्पोर्ट, एनकरेज इंक्लूजन एंड इक्वालिटी एंड हाईलाइट स्पोर्ट एज ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
भारत में क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी जैसे खेलों ने लोगों को आपस में जोड़ा है। देश भर से खिलाड़ी आकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप अगर अनीता आप देखें तो मनु जो है, भाकर जो है, और भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो जिस तरीके से जब खेलते हैं तो पूरे देश, जो पूरा देश सेलिब्रेट करता है और उनको लगता है कि वही खेल रहे हैं जो है। और सरकार खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए खेलो इंडिया, टॉप्स योजना और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रम चला रही है। खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण और सहायता दी जा रही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों और कल्याण कोष के माध्यम से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य हर खिलाड़ी को आगे बढ़ने का अवसर देना है।
एंड अगर्शिता, वी ऑल नो दैट हाउ स्पोर्ट्स प्रमोट फिजिकल फिटनेस, रिड्यूसिंग द प्रेवलेंस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस सच एज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, डिक्रीजेस हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर एंड इनहांसेस प्रोडक्टिविटी, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री।
और जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि खेल तनाव, अवसाद और चिंता को कम करते हैं और तेजी से शहरीकृत डिजिटल होते समाज में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जो बच्चे हैं वो टीवी, मोबाइल पे चिपके हुए होते हैं अनीता, और कहीं भी उनको जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत जीरो हो गई है, मतलब वो जाना ही नहीं चाहते बाहर। लेकिन अगर हम अपने बच्चों में जो है ये हैबिट्स लाएंगे कि वो आउटडोर गेम्स में भी पार्टिसिपेट करें, खेलें, तो हो सकता है कि हम उनकी आईसाइट को भी अच्छा बना सकें और इतनी कम उम्र में उनकी आईसाइट भी नहीं खराब हो और उनकी हेल्थ भी जो है बेहतर रह सके।
करेक्ट। स्पोर्ट हैज प्रूवन टू बी अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल टूल इन प्रमोटिंग पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स रोल फॉर सोशल प्रोग्रेस इज फर्दर एक्नॉलेज। स्पोर्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इनेबलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी मस्ट रिकग्नाइज द ग्रोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट to the realization of development and peace in its promotion of tolerance and respect and the contribution it makes to the empowerment of women and of young people, individuals and communities, as well as to health, education and social inclusion objectives. The theme, like you mentioned, for 2025 is leveling the playing field, sport for social inclusion, which highlights the importance of creating equal opportunities through sport. It promotes the idea that sports can break down barriers, whether economic, gender-based or social, ensuring no one is left behind.
जी हाँ, ये विषय आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं दुनिया में बहुत ही ज्यादा असमानता, संघर्ष और बहिष्कार वैश्विक विकास में बाधा बन रहे हैं। और खेल एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में कार्य करता है जो सीमाओं, संस्कृतियों और विचारधाराओं के पार लोगों को जोड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमें ये सिखाता है कि खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी खेल को खेलों के माध्यम से एक बेहतर और समावेशी समाज का निर्माण करना चाहिए।
This year's theme aims to challenge stereotypes, promote equal opportunities and enable inclusive sport for all, regardless of age, gender or race. It highlights the role of sport as a unifying force that fosters inclusion and more equitable societies while being a powerful platform for dialogue to tackle prejudices and inspire positive change across the world.
हर खेल में देश के लोगों को उनकी जाति, लिंग, पंथ, नस्ल आदि से अलग करके उस राष्ट्र की एक पहचान के द्वारा एकजुट करने की शक्ति होती है। क्योंकि जब कोई खेल खेलता है और हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है तो हम ये नहीं सोचते कि वो किस कास्ट से है, किस देश के किस भाग से है, हम ये बोलते हैं कि ये हमारे देश का खिलाड़ी है। तो इसीलिए नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि खेल में दुनिया को बदलने की ताकत है, इसमें लोगों को प्रेरित करने की और लोगों को एकजुट करने की ताकत है। ऐसी ताकत बहुत कम चीजों में होती है। आज देश भर में रामनवमी धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। ये त्योहार भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है। अयोध्या में भी लोग इस पर्व को उत्साह के साथ मना रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भये प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित मतहारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अयोध्या में रामलला के जन्म का उत्सव है। जय श्री राम के उद्घोष से रामनगरी गुंजायमान है। रामनवमी के मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का विशेष श्रृंगार कर 56 भोग अर्पित किया गया। दोपहर ठीक 12 बजे रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणों ने तिलक किया। इस ऐतिहासिक क्षण को लाइव प्रसारित किया गया। बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे भक्तों पर पहली बार द्रोण से सरयू नदी के जल की फुहार डाली जा रही है। रामनवमी पर इस बार अयोध्या में 2.5 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो आज हमारे पास जो सबसे पहली खास खबर है वो गुजरात से है। गुजरात में पोरबंदर जिले के माधवपुर में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्री मनसुख मांडविया मेले का उद्घाटन करेंगे। ये मेला हर वर्ष द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी के दिव्य मिलन के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है।
माधवपुर घेड़ मेले में कलाकारों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन से श्रीकृष्ण और रुक्मिणी जी के दिव्य विवाह को नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस वर्ष मेले में गुजरात के साथ साथ भारत के सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 1600 से अधिक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश करेंगे। मेले का आयोजन गुजरात पर्यटन और खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि विभाग की संयुक्त पहल के तहत किया जा रहा है। 9 अप्रैल को एक भव्य विवाह महोत्सव आयोजित किया जाएगा और 5वें दिन विवाहित जोड़े का द्वारका में भव्य स्वागत किया जाएगा। इस मेले के तहत पोरबंदर के अलावा इस बार अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, सोमनाथ और द्वारका में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष माधवपुर घेड़ मेले के हिस्से के रूप में माधवपुर समुद्र तट पर विभिन्न खेल गतिविधियों का बीच फेस्टिवल भी आयोजित हो रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
माधवपुर पहुंचे सिक्किम के एक कलाकार ने कहा कि ये मेला पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृतियों को जोड़ता है।
ये माधवपुर फेयर जो है, माधवपुर का ये जो कृष्ण जी और रुक्मणी जी का जो विवाह संबंधित जो कार्यक्रम होता है उससे पूरा नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल भारत जो है उनको मर्ज करने में, एक दूसरे को जानने में, पहचानने में, और एक दूसरे का कल्चर क्या है, रहन सहन, खान पान, जैसे कि कल्चरल डांस वगैरह, उसके डांस के थ्रू बहुत ही कनेक्ट कर रहा है।
इस साल मेले में हिस्सा लेने के लिए पूर्वोत्तर भारत से भी 800 कलाकार पहुंचे हैं।
इस बार जैसे 800 कलाकार नॉर्थ ईस्ट के आ रहे, जो हर बार 200 कलाकार आते थे, इस बार 800 पूरा एक ट्रेन भर के कलाकार आए हैं। वो एक अपना आप एक हिस्ट्री है। और गुजरात के जो कलाकार हैं उन सबको एक मौका मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट के हमारे इन कलाकारों के साथ मिल के परफॉर्म करने का।
And now we go over to Kohima. In a monumental step towards promoting tourism and safeguarding the cultural heritage of the Konyak Naga tribe, the much-awaited Konyak Heritage Complex was inaugurated by Union Minister of State for Education and Donet, Dr. Sukant Majumdar, and Nagaland Chief Minister Nia Furio in Mon Town. The grand inauguration coincided with the vibrant celebrations of the Eolyang Festival, the premier festival of the Konyak tribe, making the event even more significant for both the locals and visitors alike. We have a report.
The inauguration of the Konyak Heritage Complex marks a new chapter in Mon District's journey to becoming a cultural and tourism hub and a chance for the world to discover the beauty and history of one of Nagaland's most iconic tribes. Addressing the celebration, Union Minister of State for Education and Donor, Dr. Sukanta Mazumdar, lauded Konyak Heritage Site as a significant initiative dedicated to preserving and promoting the rich cultural legacy of the Konyak tribe.
This multidisciplinary site has been developed to boost tourism, support livelihoods, and ensure that future generation remains connected to their roots. The Konyak tribe is a shining example of cultural resilience and unity.
The entire Konyak community observe All In Festival in the first week of All In Lee, that is April, every year since time immemorial. All In is observed after completion of sowing of seeds in the new fields and also to mark the end of the old year and to welcome the new year, beginning with spring when a rite of flowers in every hue starts to bloom. It is a time to ask Almighty God for bountiful harvest of crops in that very year. The All In is spread over 6 days. Each day has separate names and different significance. With the Konyak Heritage Complex, Mon is set to become a must-visit destination for travelers seeking to explore the vibrant tradition, scenic beauty, and warm hospitality of Nagaland. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में चल रही सौर ऊर्जा से ऊर्जा स्वावलंबन की लहर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की सादागढ़ हेटी नाम के छोटे से आदिवासी गांव तक पहुंच गई है। ये गांव महाराष्ट्र का पहला आदिवासी सौर ग्राम बन चुका है। अधिक जानकारी दे रही है मुंबई से हमारी संवाददाता।
घने जंगल में बसा सादागढ़ हेटी गांव सावली तहसील की टेकाड़ी गुट ग्राम पंचायत में आता है। यहां बिजली आपूर्ति में बार बार आ रही रुकावटों की वजह से ग्रामीणों के रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ रहा था। इसी कारण यहां के लोगों ने एक बड़ी पहल की। सुनते हैं हमारे चंद्रपुर संवाददाता मंगेश बेड़े से।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अनुदान का लाभ लेते हुए चंद्रपुर जिले के सादागढ़ हेटी गांव के 19 घरों की छतों पर 1 किलोवाट के सौर प्रकल्प लगाए गए। इसके साथ ही यहां के स्कूल की छत पर 1 किलोवाट का बिना अनुदान वाला प्रकल्प स्थापित किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे महावितरण के कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर दारवेकर।
सादागढ़ हेटी ये गांव आदिवासी बहुल है और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हमने पूरे गांव को सोलर सिस्टम से इनके घरों को जोड़ दिया है। 3 मार्च को इस गांव में जिला अधिकारी कार्यालय से फंड आवंटित किया गया था और इस गांव का काम 7 मार्च को शुरू कर 29 मार्च को खत्म किया गया और इस गांव को 31 मार्च 2025 को सौर ग्राम घोषित किया गया।
कुल मिलाकर 20 किलोवाट की इस सौर यंत्रणा से हर महीने करीब 2400 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ 20 दिनों में पूरी कर सादागढ़ हेटी महाराष्ट्र का पहला आदिवासी सौर ग्राम बन चुका है।
अब इस छोटे से आदिवासी गांव के घर बिजली के उजाले से रोशन हो रहे हैं और इस गांव के लोगों के चेहरे भी। परिक्रमा के लिए चंद्रपुर से मंगेश बेड़े के साथ मुंबई से अंकिता आपटे।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Man needs salt as he needs air and water. This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right.
On 6th April 1930, Mahatma Gandhi, after walking for 241 miles, defied the salt's law by picking up a lump of salt at Dandi village in Gujarat.
Truth was once again on the march. Never was the wave of patriotism so powerful in the hearts of Indians as it was on this great occasion.
The spark of Dandi March ignited the flames of the freedom movement and caused the idea of mass civil disobedience to spread like wildfire across the nation.
Daily, Gandhi tramped about 10 miles. On the way, he spoke on his familiar themes, beseeching the people to abjure alcohol, abandon child marriage, and, when the signal came, to break the salt law.
Dandi March was initiated by Mahatma Gandhi from Sabarmati Ashram on the 13th of March 1930 along with 78 Satyagrahis. Daily, they walked and addressed public meetings. The ashram routine of prayer, spinning and writing up the daily diary was followed by every marcher.
After the day's march through heat and dust, Gandhi and his followers entered the village Dharamshala for the night's rest. In the evening, the prayer meeting was held in the village. Gandhi explained his mission. The soldiers of the first batch had burnt their boats the moment the march began. He added that he would not return to the ashram until the Salt Act was repealed and Swaraj won. Next morning, the people of Aslali saw Gandhi stride away with his pilgrim band to the next stage in the journey to the sea.
The long march of 241 miles finally ended on the 5th of April 1930. Along the way, Gandhiji and his companions had broken journey for the night at 22 places.
Sarojini Naidu received Gandhi and his followers on the outskirts of the village. After relaxing for a few hours, he set out to prepare the people for the war against the salt tax that was to begin next morning.
On April the 6th, the atmosphere at Dandi was both tense and solemn. The day began with prayers and Gandhiji addressed the people.
Those who fear the government will leave. Only those who are prepared for jail going and for receiving bullets should accompany me tomorrow morning.
Gandhiji then nominated Sri Abbas Tayyibji and after him Sarojini Naidu to lead the Satyagraha if he was arrested. After prayers, Gandhiji with his followers took a bath in the sea. Then, at 8:30 a.m., he defied the salt law by picking up a lump of salt. The entire nation rose against what Gandhiji described as Gunda Raj.
Millions broke the salt law and courted imprisonment. Salt depots were raided everywhere and the manufacture of salt was undertaken. In a single raid at Darsana, 289 volunteers were wounded. But even the brutality of the police failed to break the morale of the people. The police opened fire in Calcutta, Madras and Karachi and perpetrated acts of brutality all over the country. On May the 4th, Mahatma Gandhi was arrested at Karadi, 3 miles from Dandi, whilst asleep in his cottage.
और अब हम याद कर रहे हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. आज कन्नड़ सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रतिमा देवी की पुण्यतिथि है. उन्होंने अभिनय के सपने को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया था. एक्टिंग के प्रति उनमें इतना जुनून था कि महज 11 साल की उम्र में इसे पूरा करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी. प्रतिमा देवी ने अपने करियर में 60 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया. उन्होंने अपना पहला फिल्म डेब्यू 1947 में कृष्ण लीला नाम की फिल्म से किया था. इसके बाद साल 1951 में उन्होंने जगन मोहिनी नाम की एक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी. जगन मोहिनी पहली कन्नड़ फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगातार 100 दिन पूरे किए थे. आइए सुनते हैं इसी फिल्म से उनका ये गीत. उनकी आखिरी फिल्म रमा शमा भामा थी जो 2005 में रिलीज हुई थी. प्रतिमा देवी को कर्नाटक सरकार द्वारा 2000 से 2001 के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था.
टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ राफायल राफालो सांसियो द अल्बिनो. ही passed away on this day in 1520, the Italian painter, architect of the High Renaissance. His work is admired for its clarity of form, ease of composition and visual achievement of the Neoplatonic ideal of humor grandeur. Together with Michelangelo and Leonardo da Vinci, he forms the traditional trinity of great masters of that period. Raphael was enormously productive, running an unusually large workshop, and despite his early death at 37, leaving a large body of work. Many of his works are found in the Vatican Palace, where the frescoed Raphael rooms were the central and the largest work of his career. best known work is the School of Athens in the Vatican, Stanza della Signatura. After his early years in Rome, much of his work was executed by his workshop from his drawings with considerable loss of quality. He was extremely influential in his lifetime, though outside Rome his work was mostly known from collaborative printmaking. After his death, the influence of his great rival Michelangelo was more widespread until the 18th and 19th century, when Raphael's more serene and harmonious qualities were again regarded as the highest models.
आज हिंदी और बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री सुचित्रा सेन की जयंती है। वे मुनमुन सेन की मां थी। विशेषकर उत्तम कुमार के साथ अपने अभिनय के कारण वे पूरे पश्चिम बंगाल में काफी लोकप्रिय हुई। उत्तम सुचित्रा की जोड़ी आज भी बांग्ला चलचित्र की श्रेष्ठ जोड़ी मानी जाती है। सुचित्रा सेन ने अपने करियर की शुरुआत 1952 में बंगाली फिल्म शेष कोठई से की थी। उन्हें 1955 में बिमल राय की हिंदी फिल्म देवदास में उन्होंने पारो की भूमिका निभाई थी। इसमें उनके साथ दिलीप कुमार भी थे। आइए सुनते हैं देवदास फिल्म से उनका ये फेमस डायलॉग।
ये तुमने क्या किया देवदास?
रो नहीं पारो, ये जख्म तो जल्द ही भर जाएंगे, सिर्फ एक दाग रह जाएगा। अगर कभी कोई कुछ पूछे तो झूठ मूठ कोई बात बना के कह देना, और नहीं तो सच ही बता देना।
लेकिन देवदास,
कुछ नहीं पारो, इस आखिरी विदाई के दिन याद रखने के लिए सिर्फ एक निशान बना दिया है, ताकि चांद से उखड़ा कर कभी आईने में देखो तो शायद तुम्हें मेरी याद आ जाए। मैं मूर्त तेरा, मेरा शायद जन्म जन्म का यही रिश्ता है, पर तुम उसे भूल जा पाओ। तुम तो जानती हो कि मैं नादान हूं, सोच समझ कर कुछ बात नहीं कर सकता। तुमने अच्छा ही किया बारे,
दिग्गज अभिनेता उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी को कोई भुला नहीं सकता। दोनों ने 1953 से लेकर 1975 तक 30 फिल्मों में साथ काम किया। 1959 की बंगाली फिल्म दीप जवेली जाई को सुचित्रा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। सुचित्रा सेन बंगाली सिनेमा की एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अपनी अलौकिक सुंदरता और बेहतरीन अभिनय के दम पर लगभग 3 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया और अग्नि परीक्षा, देवदास तथा सात पाके बंधा जैसी यादगार फिल्में की। सुचित्रा 1970 के दशक के अंत में फिल्म जगत को छोड़कर एकांत जीवन जीने लगी। वे प्रथम भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव में पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये
छोटे छोटे संग लेके आया है मेरा बचपना।
Today is the death anniversary of Igor Fyodorovich Stravinsky, the Russian composer, pianist and conductor. He is widely considered one of the most important and influential composers of the 20th century. Stravinsky's compositional career was notable for its stylistic diversity. He first achieved international fame with the three ballets commissioned by the Diaghilev and first performed in Paris with Ballet's Ruses, The Firebird, Petrushka and The Rite of Spring. The latter transformed the way in which subsequent composers thought about rhythmic structure and was largely responsible for Stravinsky's enduring reputation as a musical revolutionary who pushed the boundaries of musical design. I am playing a snippet from The Rite of Spring.
आज भारतीय जिम्नास्ट प्रणति नायक का जन्मदिन है। वे टोक्यो जापान में आयोजित हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स 2020 में भारत की ओर से प्रतिभाग करने वाली एकमात्र जिम्नास्ट रहीं।
एंड टुडे इज द बर्थडे ऑफ द अमेरिकन कंट्री म्यूजिक सिंगर सॉन्ग राइटर एंड वन ऑफ द कंट्रीज म्यूजिक बेस्ट नोन आर्टिस्ट एंड बिगेस्ट सेलिंग फीमेल सिंगर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट टैमी वाइनेट। बोर्न ऑन This is her death anniversary. She passed away in 1998 when it was called the First Lady of Country Music, and her best song, Stand By Your Man, is one of the best-selling hit singles by a woman in the history of country music.
And you and I have never been too close. But we've always been on speaking terms. I've watched your way of doing things and tried to understand.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अनीता को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।